ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा।
तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध से अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। श्लोक संख्या 2। श्री नारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् गृहेष्वस्थितो राजन् कुर्वन् क्रियः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। श्रीनारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। श्रीनारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षान् उपासीत महामुनीन्। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। हरे कृष्णा। गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों का स्रोत है या कारण है। ब्रह्मचारी और सन्यासियों का जन्म भी गृहस्थ आश्रम में ही होता है। सन्यासी गण भी आसमान से टपक के नहीं आते, उनका भी जन्म गृहस्थ आश्रम में ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो अन्य कोई भी आश्रम नहीं होते। गृहस्थ आश्रम इस तरह से देखा जाए तो एक मेरुदंड है सारे समाज के लिए। गृहस्थाश्रम के द्वारा या गृहस्थाश्रम के कारण बहुत सी चीजें चलती हैं। जो भी धनार्जन करने के कार्य हैं, व्यवसाय के कार्य हैं, वो सब गृहस्थों द्वारा संचालित होती हैं। गृहस्थाश्रम में अधिकतर लोग रहते हैं, वैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार प्राचीन काल में किसी भी देश में या प्रांत में 25% लोग ब्रह्मचारी रहा करते थे, 25% गृहस्थ, 25% वानप्रस्थ और 25% सन्यासी। परंतु आजकल कितना समय बदल गया है कि किसी भी आश्रम में लोग अच्छी तरह से रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग में हर चीज का घटन हो चुका है, प्रदूषण हो चुका है। इसलिए न कोई आजकल आश्रम में ठीक से रह पा रहा है, न वर्ण में। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया है कि हमें बहुत अच्छे ढंग से वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करना चाहिए और इसको अपना आधार बनाकर भगवान की भक्ति स्वयं करनी चाहिए और सारे समाज में फैलाना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम, ये चारों आश्रम है। ऐसा नहीं कि जो मंदिर में रहते हैं केवल वही आश्रम में रहते हैं। जब हम आश्रम शब्द का प्रयोग करते हैं तो मन में एक चित्र आता है, कहीं तीर्थ स्थान में कोई स्थान है जहाँ साधु लोग बैठे हैं, या हिमालय में कोई कुटिया है जहाँ जटाधारी कोई मुनि बैठे हैं, तो ऐसे कोई चित्र मन में आता है। परंतु आश्रम का विचार केवल बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए, केवल अमुक प्रकार का की कुटिया हुई या घर हुआ या ऐसे वेश पहने वाले लोग यही बस आश्रम में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आश्रम का तात्पर्य है या अभिप्राय है आश्रय। जब भगवान का आश्रय लिया जाता है तो वो स्थान आश्रम हो जाता है। केवल किसी स्थान को आश्रम बुलाने से वो आश्रम नहीं बनता। आश्रम में जब तक भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता तो आश्रम शब्द का कोई मायने नहीं। इसलिए हर एक स्थान में जहां भी भगवान का आश्रय लिया जाता है, भले वो एक साधारण गृहस्थ का घर भी क्यों ना हो, वो आश्रम कहलाता है। प्लीज स्विच ऑफ द फैन। ये कई बार हम बताते हैं, जगह जगह जाते हैं तो आपने पहले भी सुना होगा भवन शब्द की व्याख्या। भवन जानते हैं ना आप क्या है? भवन क्या होता है? निवास स्थान है, कोई घर है, किसी घर को भवन कहते हैं। भवन के दो भाग हैं, भ और वन। भ अर्थात भगवान। अब भगवान को आप भवन से निकाल दीजिए तो क्या रह जाता है? वन। तो वन में कौन रहते हैं? पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं। दूसरे शब्द में किसी घर में से यदि भगवान को निकाला जाए, भगवान को कोई स्थान नहीं दिया जाए, घर में रहने वाले लोग भगवान की उपासना सेवा आदि नहीं कर रहे हों, तो ऐसा घर वन के समान है और ऐसे लोग द्विपद पशु कहलाते हैं, दो पैरों वाले पशु। तो ऐसे कठोर वचनों में शास्त्र में वर्णन किया हुआ है उन व्यक्तियों का जो घर में रहते हुए पारिवारिक जीवन चलाते हुए भगवान के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे पारिवारिक जीवन व्यर्थ है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तो ऐसे लोगों को गृहमेधि कहते हैं, जिनकी बुद्धि जिनकी मति केवल गृह में अर्थात संसार में लगी हुई है, उनकी बुद्धि बिल्कुल भगवान में नहीं लगती। दूसरी ओर पारिवारिक जीवन में या घर में रहकर जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो प्रामाणिक गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ आश्रम, गृह में स्थित होकर भगवान का आश्रय लेना, यह है गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, उसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति इस तरह भगवान का आश्रय नहीं लेता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है, पशुतुल्य होता है। आजकल क्योंकि भगवान को घर में स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो परिवार टूटते जा रहे हैं और इस तरह से लोगों में भेद बहुत बढ़ रहा है। प्राय हर एक घर अब कुरुक्षेत्र बन गया है। एक बार एक भक्त हमें बता रहे थे कि हम यहाँ पार्थ सारथी या भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन का रथ चला रहे हैं युद्ध भूमि में, उस चित्र को हम घर में लगाए तो हमारे रिश्तेदार आए, वो कहने लगे नहीं नहीं ये चित्र नहीं लगाना, क्योंकि ऐसे चित्र लगाने से या कुहर घर में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा ये नहीं लगाने से घर में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा, कुरुक्षेत्र का भी नहीं। कुरुक्षेत्र में तो कम से कम श्री कृष्ण उपस्थित थे, श्री कृष्ण के आदेश अनुसार उनके भक्तों ने अर्जुन युधिष्ठिर आदि उन्होंने दुष्टों का विनाश किया। यदि पार्थ सारथी श्री कृष्ण नहीं रहेंगे, उनके भक्त अर्जुन हमारे घर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उत्पात ही होगा। इसलिए यदि आपने ये बात कहीं सुनी है तो घबराइए नहीं, एक क्या दो या तीन भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो लोग बस यूं ही कहते रहते हैं कुछ न कुछ, क्योंकि ज्ञान पर तो आधारित होता नहीं है वो जो कहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया कि घर में कुरुक्षेत्र युद्ध हो जाएगा ये चित्र लगाने से, तो उसको मान लेते हैं। तो क्योंकि भगवान केंद्र बिंदु होते हैं एक आदर्श गृहस्थ के जीवन में, इसलिए परिवार के सभी सदस्य कृष्ण की सेवा हेतु आपस में बड़े अच्छे सहयोग से, प्रेम से, जिम्मेदारी से रहते हैं। कम से कम रहना चाहिए। जिस हद तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, जिस हद तक श्री कृष्ण हमारे पारिवारिक जीवन के केंद्र बिंदु नहीं हैं, जिस हद तक हमारा स्वार्थ ही और भोग ही केंद्र बिंदु है हमारे परिवार का, उस हद तक परिवार में अशांति होगी। तो गृहस्थ जीवन का सार है कृष्ण भक्ति। पति का कर्तव्य है कि घर में अपने पत्नी को और बच्चों को एक अनुकूल वातावरण निर्माण करके दे, जिसमें कि सभी भक्ति कर सकें। पत्नी का कर्तव्य है कि वो भी ऐसे घर में माहौल बनाए जिसमें कि सभी लोग अच्छी तरह से भक्ति करें। सबका कर्तव्य बनता है। परंतु आधुनिक काल में हम देखते हैं कि समस्या कुछ विकट हो गई है। बाहर की दुनिया उल्टी दिशा में चलती जा रही है इतनी तेज गति से कि ये संसारी प्रवाह जो है भक्तों को भी बहा के ले जाता है। ये संसार का प्रवाह बड़ा जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली है। पहले तो बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, और वो भी थोड़े इलाकों में जहां की ये प्रवाह तीव्र हुआ करता था। आजकल जंगलों में, गांव में, छोटे छोटे गांव में भी टीवी आदि के माध्यम से ये संसार का प्रवाह इतनी तीव्रता से प्रवेश कर चुका है कि बेचारे छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग भी विचलित हो जाते हैं। बॉलीवुड के सपने देखते रहते हैं बेचारे गांव में रहकर, फिर उनकी दशा कैसी होगी। अब उनकी दशा ऐसी है तो शहर में रहने वाले लोगों की बात ही तो दूर है, वो तो बिल्कुल ही एक माया के जगत में रहते हैं, भगवान को बिल्कुल बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इसलिए उत्पात समाज में बढ़ते जा रहा है और इतनी तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद लोग दुखी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो समाज का मूल आधार है परिवार या कुटुंब, उसको हम ठीक से बनाए नहीं रख पा रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। पहले हर घर में मंदिर हुआ करता था, परिवार के सदस्य बैठ के कुछ भजन कीर्तन किया करते थे, परिवार के बुजुर्ग जो है बैठ के कुछ दो बातें भगवान के बारे में या शास्त्रों से कुछ बताया करते थे, गांव गांव में लोग इकट्ठे होकर शाम को गांव के मंदिर में बैठ के कथा आदि सुनते थे। लेकिन आजकल जिस स्थान में घर में मंदिर हुआ करता था वहां नया मंदिर है और उस मंदिर का नाम है टेलीविजन, और जहां पे पहले भगवान हुआ करते थे मंदिर में, अब इस मंदिर में सिनेमा के अभिनेता और अभिनेत्री हैं, वो हमारे भगवान बन गए हैं, और दोनों माता पिता बच्चे मिलकर उस सिनेमा के नाच गाने दिन भर देखते रहते हैं। आजकल रात में भी 24 घंटे का चैनल आजकल है, प्रगति आखिर हुई है ना। तो यही पारिवारिक जीवन है। यहाँ तक कि हमारे जो राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, दार्शनिक हैं, प्रगति की कल्पना उनके मन में ये है कि लोगों की आर्थिक प्रगति कराई जाए, तरह तरह के भौतिक सुविधाएं प्रदान किए जाए उनको, हर एक घर में टीवी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ताकि दिन भर वो सिनेमा देखें और इंटरनेट देखें और फिर बस इसी में अपना जीवन बिताएं। ये है प्रगति। तो गृहस्थ जीवन में सर्वप्रथम नारद जी बताते हैं कि हमें भगवान को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, अपने धनार्जन करते समय परिवार के भरण पोषण के लिए जब हम कोई व्यवसाय नौकरी आदि करते हैं तो हमारे आमदनी से कमाई से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वासुदेव अर्पणम, यह नारद जी कहते हैं, वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनीन। तो वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, बड़े खुशी से करना चाहिए। एक बार हुआ ये कि एक ब्राह्मण थे, वो हाथ में थोड़े मूड़ी लेकर जा रहे थे, यहाँ कुरमुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुरमुरा बोलते हैं, तो ले जा रहे थे कहीं, भूख लगी थी, खाने के लिए जा रहे थे, अपने मुट्ठी में लेकर जा रहे थे कि हवा का झोंका आया और वो जो कुरमुरा है मूड़ी है वो उड़ गई सब, और जैसे उड़ गई बेचारा क्या कर सकता, जाके पकड़ तो नहीं सकता है, लेकिन ब्राह्मण था आखिर, तो कहने लगा श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कि मैंने श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो श्री कृष्ण को अर्पण नहीं किया, श्री कृष्ण ने छीन लिया, तब जाकर हमने कहा कि अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे अर्पण की बात यहां नहीं कर रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं कि स्वेच्छा से हर एक भक्त को चाहिए कि अपने परिश्रम का फल जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित करे। और ये कैसे करना चाहिए, ये कृष्ण श्री कृष्ण कर्मार्पणम का विज्ञान है, इसको कैसे जानना चाहिए और इसको कैसे करना चाहिए, भक्तों की संगति में उपलब्ध होता है और कहीं नहीं। तो नारद जी बताते हैं कि भक्तों के संग में हमें जाना चाहिए, इससे हम जान सकते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य भी बताते हैं कि 50 वर्ष पूर्व भी मैंने देखा है, अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बंगाल के गांव में और कलकत्ता शहर के मोहल्लों में लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत आदि का श्रवण आदि किया करते थे, शाम के समय रात को सोने के पहले ये अवश्य किया करते थे। प्रत्येक गांव में ऐसे अनुष्ठान या कार्यक्रम हुआ करते थे और इस तरह से लोगों को आध्यात्मिक लाभ होता था, परंतु आजकल ऐसे नहीं होता है। कहीं सत्संग किया भी जाता है, थोड़े लोग अच्छे होते हैं, पुण्यवान होते हैं, वो आके शामिल होते हैं, अन्य लोग हैं जो विरोध करते हैं कि बहुत आवाज आ रही है, हमारे टीवी के कार्यक्रम को हम नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में कीर्तन की आवाज इतनी जोर से आ रही है। तो ये दशा है आधुनिक काल में। तो नारद मुनि आगे बताते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि वो बार बार ऐसे भक्तों के संग में आए और भगवान के दिव्य कार्यों के बारे में सुने, भगवान के अवतारों के बारे में सुने, और ऐसे भागवत कथा और पौराणिक कथाओं को भी वो ध्यान से सुने। इस तरह से भगवत कथा का निरंतर श्रवण करने से संसार की आसक्ति से वो धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। और जब हम संसार के, हमारे जीविका के लिए, हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए परिश्रम कर रहे होते हैं, तो ऐसे कार्य करना चाहिए कि मानो हम बहुत आसक्त हैं, परंतु वास्तव में हमें निरासक्त होना चाहिए। ये कला है, क्योंकि ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि यदि हम निरासक्त हो जाएं, तो वो उत्साह कहाँ रहेगा काम करने के लिए, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि ऐसे कार्य करो कि मानो तुम बहुत आसक्त हो, उसी उत्साह से करो, उसी जिम्मेदारी से करो, परंतु कृष्ण के लिए करो और निरासक्ति से करो, और अपना जीवन बड़ा सरल बनाओ। बहुत सरल जीवन बनाना चाहिए, सरल जीवन ऊंचे विचार। फिर नारद जी कहते हैं कि यदि हमारे रिश्तेदार हमें आके कहते हैं कि अरे तुम्हें और धन कमाना चाहिए, तुम्हें और समाज में आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा व्यक्ति बनना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। हाँ हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए। कई भक्तों की शिकायत होती है कि हम तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य आदि रोक टोक करते हैं, कभी कोई शिकायत करते हैं, कोई कहते नहीं जाना चाहिए, विरोध करते हैं और कहते हैं कि भौतिक प्रगति करनी चाहिए, दुनिया में कुछ बनना चाहिए, खूब पैसे कमाने चाहिए। तो इस समय इनसे झगड़ने के बजाय, अक्सर भक्त लोग जब लोग भक्त बन जाते हैं ना, तो अपने परिवार के साथ झगड़ना शुरू करते हैं, तो और समस्या हो जाती है। तो झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, नारद जी कहते हैं। हाँ में हाँ मिलाते जाना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पैसे कमाने खूब कमाना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन भक्ति करते रहना चुपचाप, इस निष्ठा से कि हम किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करने से सबका भला ही होगा, परंतु अज्ञान के कारण लोग ऐसे कहते हैं, प्रगति की कोई गलत ही धारणा होती है उनके मन में, उनकी दृष्टि भौतिक होने के कारण वो नहीं समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कितना आवश्यक है और कितना मूल्यवान है। गृहेषु गृह मेधि नाम, इसलिए ऐसे गृह मेधी की तरह रहते हैं, उनको आत्म तत्व क्या है इसके बारे में न कोई जानकारी है न कोई रुचि है, परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है ये। चाहे कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, चारों आश्रमों के व्यक्तियों का कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, कृष्ण भक्ति। ऐसे नहीं है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारा जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और केवल सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है, ऐसे नहीं है। जी सही है, भक्ति ही करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, परंतु भक्ति एक ऐसे अमृत है और इस अमृत का मूल्य लोग नहीं जानते हैं। तो अमृत जब पिया जाता है ना, या अमृत का पान करते समय हमें कोई पात्र चाहिए, तो वो पात्र है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। संस्कृति के बिना हम भक्ति को कैसे लंबे समय तक कर पाएंगे? तो घर में रहते हुए यदि हर एक परिवार का सदस्य अपने अपने कर्तव्यों को निभाते जाए, जैसे कि हम पिछले दो दिनों में चर्चा करते आए हैं, और साथ साथ भगवत भावना में करें, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हम करें, तो पारिवारिक जीवन बहुत सुखी रहेगा और साथ साथ हम आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर पाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पहले के जमाने में जो परिस्थिति थी और आज के जमाने में जो है, इसमें तो बहुत अंतर है। तो आजकल हम छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं, परिवार के कार्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर कैसे हम भक्ति करें और संसार के कर्तव्यों को साथ साथ निभाएं? बहुत मुश्किल होता है, और मंदिर भी आना होता है, मंदिरों में भी सेवा करनी पड़ती है, सत्संग में आना होता है, तो कैसे दोनों एक साथ में करें? सर्वप्रथम घर को संभालना चाहिए। भवन को नहीं संभालेंगे तो फिर असंतुलन हो जाएगा हमारे जीवन में। असंतुलित अवस्था में, अस्थिर अवस्था में भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही करके मंदिर बार बार आना चाहते हैं, तो उसमें घर में असंतुलन होने के कारण फिर भक्ति में भी विघ्न आ जाएंगे। हमारा मन फिर अच्छी तरह से हम केंद्रित नहीं कर पाएंगे भगवान की ओर। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर ऐसा भी नहीं कि हम पारिवारिक जीवन में और इन कर्तव्यों में इतने मग्न हो जाएं कि मंदिर के लिए समय ही नहीं मिले, सत्संग के लिए हम नहीं आ सकें, मंदिर में सेवा भी नहीं कर सकें, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। संतुलित जीवन जीना चाहिए, घर को भी संभालें और मंदिर में भी आए। कभी कभी लोग कहते हैं यदि भगवान सब जगह होते हैं तो फिर मंदिर में ही क्यों, हम घर में ही करेंगे? तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि पढ़ाई सब जगह हो सकती है, अपने बच्चे को केवल घर में पढ़ाइए, स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? लेकिन स्कूल में तो भेजते हैं लोग, घर में पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल में भी करनी चाहिए। इसी तरह से घर में भक्ति करनी चाहिए परंतु मंदिर में भी करनी चाहिए। मंदिर में आके वास्तव में हम सीखते हैं कि भक्ति क्या चीज है। मंदिर में हम जानते हैं कि परिवार को, हमारे घर को कैसे मंदिर बनाया जाए। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हर एक मंदिर को एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहां लोगों को आकर आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भारत में मंदिरों की कमी नहीं है, जगह जगह लाखों की संख्या में मंदिर हैं, लोग जाते हैं, माथा टेक कर आते हैं, कभी थोड़े दान देते हैं, चले आते हैं, ठीक है, कम से कम उतना तो कर रहे हैं। परंतु जब तक उनको ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक अपने जीवन को वो परिवर्तित नहीं करेंगे, भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक मंदिर में जाना ये सार्थक नहीं होगा। इसलिए यहां पर आके जैसे आज हम बैठे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, साथ में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर में प्रसाद पाएंगे, तरह तरह के और कार्यक्रम होंगे, हम सेवा भी करेंगे, तो इसमें इतना आनंद है, इतनी प्रेरणा हमें मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो कि घर में अकेले बैठ के नहीं मिल सकती। इसलिए मंदिरों में आना, सेवा करना, श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। इससे हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है, हम समझदार हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर घर में अच्छी तरह से हम भक्ति कर पाएंगे, घर को वास्तव में मंदिर बना पाएंगे। अब आधुनिक काल में आधुनिक उसूलों से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, पुरुष के क्या कर्तव्य हैं, महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं, बच्चों के क्या कर्तव्य हैं, बुजुर्गों के क्या कर्तव्य हैं, ये सब उल्टे पुल्टे हो गए हैं। आजकल सब मिश्रण हो गया है, कोई अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करता, हर एक दूसरे के कर्तव्य को करने को देखता है, इसलिए बड़ा एक उपद्रव समझ गया है सारे समाज में। आजकल सभी लोग नौकरी करना चाहते हैं, सभी लोग व्यापार करना चाहते हैं, तो फिर घर का काम कौन करेंगे? फिर घर में भी जो व्यापार करते थे फिर वो आके घर में देखभाल करेंगे, तो ऐसे असंतुलन हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भगवान ने एक पद्धति बनाई थी प्राचीन काल से जो चलती आई है, उसे यदि हम बनाए रखेंगे तो हमारी भक्ति व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से चलेगी और समाज में भी सब लोग अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे। तो हम जब मंदिर में आते हैं, कैसी सेवाएं हमें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, यहां हमारे मंदिरों में भाव कुछ अलग होता है, यहां बहुत जोर दिया जाता है प्रचार के ऊपर, सेवा के ऊपर, इसलिए जो और प्रचार करते हैं और भक्तों को ले आते हैं वो बहुत बड़ी सेवा करते हैं। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पीछे रह के और बहुत सी आवश्यक सेवाएं करती हैं उनका योगदान भी कोई कम नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर जाता है, अपना व्यवसाय करता है, बहुत मेहनत करके पैसे कमा के लाता है और लाता है, और घर में हम सोच सकते हैं कि वही आदमी है जो घर चला रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। पीछे रहकर घर के अंदर भी घर संभाल के घर की अवस्था को शांतिपूर्वक रखना, सबको अच्छे संस्कार देना, ये करने वाले भी एक व्यक्ति हैं, उनका भी योगदान कोई कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। उसी तरह से तरह तरह की सेवाएं होती हैं, जैसे यहां पे मंदिर इतनी तेज गति से कार्यक्रम चलते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम किसी एक समय पर होते हैं, बड़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, कहीं एक ही समय ये कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं वो चल रहा है, कहीं बाहर के कार्यक्रम में जाना है, कभी और कहीं जाना है, तो बहुत अच्छा है। परंतु इस परिवार में, भक्तों के परिवार में हमें जानना है कि हरेक को अपने अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, संस्कृति या सभ्यता के अनुसार चलना चाहिए, और जहां लोग भले सामने आकर सेवा न भी करें लेकिन पीछे रहकर कर रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि वो भी इस मंदिर के आधार हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बाहर जाके प्रचार करते हैं केवल वही महत्वपूर्ण हैं या वही केवल मूल्यवान लोग हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अनेक माताएं हैं, महिलाएं हैं, जो मंदिर में आती हैं अपने घर के सारे कर्तव्यों को पूर्ण करके, बच्चों का देखभाल करके इत्यादि, और मंदिरों में बहुत सेवा करते हैं, और फिर भाग के फिर से घर जाते हैं, घर के कर्तव्यों को भी संभालते हैं। बहुत परिश्रम का जीवन है, त्याग का जीवन है, बड़े भक्ति भाव से ये सब करते हैं, तो उनकी सेवा भी कोई कम नहीं। और जो ब्रह्मचारी हैं वो भी दिन भर मेहनत करते हैं, चाहे व्यवस्थापन में कर रहे हों या चाहे वो बाहर विश्वविद्यालय में जा रहे हों, अलग अलग जगह जाके सुबह शाम युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रहे हों, जो बहुत मुश्किल होता है आजकल, तो उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से चाहे कोई ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, दोनों को ऐसे मिलजुल कर सेवा करनी चाहिए। आजकल कितने गृहस्थ पुरुष भी हैं जो कितनी सेवा करते हैं मंदिर में आके, कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया हुआ है, मंदिर में सारा समय देते हैं, लेकिन माताओं के लिए आवश्यक है कि आप भी वैदिक सभ्यता के अनुसार जिम्मेदारियां लें, आप सेवा करें, जिससे कि समाज में भी कोई असंतुलन उत्पन्न न हो। अन्यथा क्या होता है कि घर से शिकायतें आती हैं कि ये तो घर में रहती ही नहीं है, हमेशा मंदिर में जाती हैं। कभी विद्यार्थियों के बारे में शिकायत आती है, हमारा बेटा तो पढ़ाई नहीं करता है और केवल मंदिर मंदिर कह के चले जाता है। वैसे देखिए, घर में रहने वाला बेटा मंदिर मंदिर कह के जाए, ठीक है पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन इससे भला कि बेटा कहे सिनेमा सिनेमा, बियर बार, इससे अच्छा ये कि वो मंदिर मंदिर का है। ये भी आप सोचिए कि आजकल का माहौल जैसे है और युवा पीढ़ी गलत आदतों में फंसती जा रही है, साधारण चीज बन गया है ये सब करना, लेकिन फिर भी एक संतुलन चाहिए। तो अपने अपने सभ्य अपने अपने स्थान के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए, फिर गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाएगा और हमारे भक्त समाज में भी ऐसी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना चाहिए कि माताएं हैं उनको किस तरह किन तरह की सेवाएं करनी चाहिए, जो युवा पीढ़ी है उनको क्या करना चाहिए, जो पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी हैं कैसे सेवाएं उनको करनी चाहिए, मिलजुल कर कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए, जो नए भक्त हैं जो भले प्रचार कर रहे हों, वो वरिष्ठ भक्तों के प्रति, भले वो माताएं हों या भले वो प्रभु हों, उनके प्रति दृष्टि कैसे रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो भक्त समाज एकजुट होकर बड़े एक सुखी परिवार के समान होकर आगे चलेगा, भगवान की भक्ति करके, और सारे समाज को हम भक्त बना सकते हैं। वास्तव में देखा जाए हम सब गृहस्थ हैं, क्यों? हम कृष्ण के घर के सदस्य हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, गोलोक वृंदावन में कोई सन्यासी नहीं होता। वहां सभी गृहस्थ हैं, सब भक्त हैं। तो हमारे यहां चारों आश्रमों का उद्देश्य है कि श्री कृष्ण के परिवार में हम प्रवेश कर लें। श्री कृष्ण हमारी राह देख रहे हैं कि कब ये भक्त मेरे पास आएंगे वापस। तो श्री कृष्ण के परिवार में गोलोक वृंदावन में जाकर हमें कहीं तो जन्म मिलेगा, किसी गोप के घर में, किसी गोपी के घर में, और इस तरह से श्री कृष्ण की लीलाओं में हम शामिल हो सकते हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो हमें उस पारिवारिक जीवन में शामिल होना है, ये हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी, उसकी तैयारी हमें करनी है। तो वहां पे गोपियां क्या करती थीं? गोपियां बाहर जाकर गायों को चराने नहीं जाती थीं, गोपियां घर में रह के दही का मंथन करती थीं, और मंथन करते करते अन्य घरेलू कार्यों को करते करते कृष्ण कथा करती थीं, कृष्ण कीर्तन करती थीं। उधर जो पुरुष हैं वो बाहर जाते थे, गौओं को चराया करते थे। ऐसे हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कहीं शास्त्रों में ज्यादा बताया नहीं गया है कि महिलाएं गोपियां गांवों को चराने के लिए जाती थी बाहर, और गोपगण जो हैं वो घर में बैठ के वो सब बच्चों का देखभाल करते थे और दोहन करते थे। तो उसी तरह से यहां भी हमारे तरह तरह के भूमिकाएं हैं जो सबको निभानी हैं, कृष्ण के लिए निभानी है, कृष्ण के बनाए हुए पद्धति के अनुसार हमें चलना है, अन्यथा सब जगह फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे हमारी दृष्टि यदि श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन की ओर केंद्रित रही और हम ऐसे प्रेम से एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें तो हमारा पारिवारिक जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। गोपियां एक दूसरे से प्रार्थना करती हैं या उनकी एक दूसरे को प्रोत्साहित करती हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आरती इज व्हाट टाइम? 12:30, व्हाट इज द टाइम? तो गोपियां श्री कृष्ण को कहती हैं, आहोष्यते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदि विचिन्त्यम अगाध बोधै संसार कूप पतितोत्तरणावलम्बम गेहं युषामपि मनस्युदया सदा नः। वो कहती है कि हे कृष्ण, हे नलिन नाभ, जिनकी नाभि नलिन कमल पुष्प के समान है, आपके पदारविंदों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत समय से तपस्या करते हैं और विरला ही उनको आपके चरण कमलों का दर्शन होता है। तो जब ऐसे बहुत योग्य व्यक्ति भी इतनी तपस्या करने के बाद भी विरला ही आपके चरण कमलों को देख सकते हैं, तो हम जैसे साधारण गांव में रहने वाले, वृंदावन जैसे छोटे गांव में रहने वाले महिलाओं की बात तो दूर है। गे हम जो शाम, हम तो गृह में रहने वाले गृहस्थ भक्त हैं साधारण, और हम तो संसार कूप में पड़े हुए हैं, तो इस अंध कूप से हमारा उद्धार कर लें, ऐसी आप हमारी हमारा निवेदन आपके चरणों में है। आपके आके आपके चरण कमल हमारे हृदय में सदैव स्थित हो। हर गृहस्थ की प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए, हर ब्रह्मचारी की प्रार्थना भी ऐसे होनी चाहिए, हर सन्यासी की प्रार्थना भी ऐसी ही होनी चाहिए कि भगवान के चरण कमल का उदय हमारे हृदय में हो। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारे दोनों स्वधर्मों का पालन करके यदि हमने भक्ति में आगे प्रगति की तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। वैसे गृहस्थ आश्रम के बारे में तो बहुत कुछ बताया हुआ है शास्त्रों में, हर एक आश्रम के बारे में बताया हुआ है। यदि हम धर्मशास्त्रों में जो भी चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है उसका उसको पढ़ेंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे। इसलिए हम केवल उन चीजों को लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है और लाभदायक है। अन्यथा प्राचीन काल में जैसे नियमों का पालन होता था, शायद उन सब का पालन आजकल करना संभव नहीं है। फिर भी उनका सार तो कम से कम लेना चाहिए, जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि पारंपरिक ढंग से हमारे परिवार को चलाएं और इन्हीं उसूलों के आधार पर हम भक्ति भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, पहले से प्रश्न लिखे हुए लोगों ने लिखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं विषय है पारिवारिक जीवन, इसलिए प्रश्न पहले से ही आ गए हैं। तो समय प्रवचन हमने जल्दी समाप्त किया क्योंकि प्रश्नों के लिए थोड़ा समय रखना था, इसीलिए। तो यहाँ प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले हम दूसरे कार्यक्रम में थे तो वहां कोई प्रश्नोत्तर चल रहा था, तो वो प्रश्न वहां से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ प्रश्न है लोटस वॉइस के कार्यक्रम से। आपने कहा कि ये बेहतर होगा कि महिलाएं जो हैं वो अधिक पारंपरिक भूमिकाओं को निभाएं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना घर में, विशेष रूप से उनके बेटियों को। तो आगे तो ऐसा हो तो जो प्रचारक होंगे वो सब पुरुष ही होंगे, और कोई महिला है जो सीखना चाहती है तो उन्हें भी पुरुषों से ही सीखना होगा। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि महिलाओं के लिए, खास करके जो युवतियां होती हैं उनके लिए महिला प्रचारक रहें ताकि वो उनको अच्छी तरह से प्रचार कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे हो तो बहुत अच्छा है और ऐसे होना भी चाहिए। इसलिए जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो पारंपरिक भूमिकाओं को निभाते निभाते, ये भी पारंपरिक भूमिका भी का भी एक हिस्सा है। हम कुंती महारानी की बात कर रहे थे पिछले प्रवचन में कि कुंती महारानी कभी विश्वविद्यालय में नहीं गई, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं को पढ़ने से हम जान सकते हैं कि कुंती महारानी कितनी को कितना कितने कितना ज्ञान था, विद्वान कितनी थी वो। तो इसी तरह से वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं वो कुछ नहीं जानती थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी महिलाएं। इसलिए अवश्य पारंपरिक भूमिका की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भगवद गीता के सिद्धांतों को अच्छी तरह से नहीं जानना चाहिए और नहीं कहना चाहिए। अवश्य कहना चाहिए, और कह के अधिकतर जो महिलाएं हैं उनके बीच में हमें ये फैलाना चाहिए, युवतियों को समझाना चाहिए कि संस्कृति कैसे होती है, महिला को कैसे होना चाहिए। जैसे जो पुरुष हैं फिर वो युवकों को समझाते हैं कि पुरुष को कैसे होना चाहिए, युवक को कैसे होना चाहिए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले पति पत्नी दोनों को काम करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन महंगाई की वजह से दोनों को काम करना पड़ता है। इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है क्या? वैसे यही एक प्रश्न है जो एक प्रवचन के लिए काफी है। हाँ, ये सही है, ये समस्या तो है, महंगाई का समय है, परंतु समस्या यह भी है कि हमें महंगी चीजें भी चाहिए। तो पहली बात यह है कि यदि हमने अपने जीवन को सरल से सरल बनाने की कोशिश की तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं ना वो बहुत कम हो जाएंगी। हमारे एक भक्त हैं मुंबई में, महाप्रभु जी, आप जानते ही होंगे, उनकी आवाज बड़ी बुलंद है। और एक बार याद है मुझे, कई साल पहले बंबई के एक रेलवे स्टेशन के बाहर गए वो, और एक ऊंचे स्थान पर चढ़े और वहां से अपने बुलंद आवाज में घोषणा करने लगे, आपको हम एक ऐसा रास्ता बताएंगे जिससे आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब कौन नहीं करना चाहेगा अपनी आमदनी को दुगनी? तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जल्दी से, और महाप्रभु जब खड़े हो जाते हैं तो सब लोग आ जाते हैं। तो सब लोग आए, इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया, और फिर अंत में उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ये चार नियमों का पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। ये चार नियमों का पालन करेंगे तो आपके आधे खर्चे कम हो जाएंगे। और इसका मतलब, तो आधा खर्च कम हो गया तो आमदनी दुगने होने के बराबर है, एक रुपए बचाना ये एक रुपए कमाने के बराबर है। तो ठीक उसी तरह से हम जब भागते हैं तो चार नियम का पालन तो करते हैं, फिर भी और कई शौक हो सकते हैं। यह हमारे और कई चीजें सुविधाएं चाहिए, इतनी सुविधाएं की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में, अनावश्यक आवश्यकताएं उनको हम आवश्यक समझते हैं उन वस्तुओं को, परंतु वास्तव में उतने आवश्यक नहीं है जितना कि हम समझते हैं। तो पहली बात यह है कि अपने जीवन को यदि हम सरल बनाएं, इतनी सुविधाओं को न चाहें जो वास्तव में जरूरी नहीं हो हमारे लिए, तो हमारे पैसे की जो आवश्यकता है वो भी कम हो जाएगी। दूसरी बात है, कि यदि बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही विकट परिस्थिति है, तो फिर ठीक है। जहां जीविका का प्रश्न आता है और पत्नी के व्यवसाय नौकरी नहीं करने से दाल रोटी नहीं मिलेगी, यदि ऐसी कोई विकट परिस्थिति है तो ठीक है अवश्य, क्योंकि अपने शरीर को बचाए रखना, परिवार का भरण पोषण करना, ये तो आवश्यक है ही। परंतु जिनकी ऐसी परिस्थिति नहीं है उनके लिए आवश्यक नहीं है ये। हालांकि हम लोग इतने कट्टर नहीं हैं भक्ति मार्ग में होकर इन बातों में, क्योंकि हमारा जो जोर होता है वो भक्ति के ऊपर होता है, केवल पारंपरिक पद्धतियों के ऊपर नहीं। फिर भी जितना हो सके पारंपरिक पद्धतियों को स्वीकार करने से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक अनुकूल आधार या वातावरण मिल जाता है, तो हम इन परंपराओं का सहारा लेते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अंततः उद्देश्य भक्ति का होता है, तो कहीं कहीं परिस्थिति के अनुसार यदि थोड़ा कुछ बदलाव करना पड़े ताकि हम अच्छी तरह से और भक्ति करें तो ठीक है, कर लें। हम कट्टरवादी नहीं हैं इस बारे में कि कोई महिला नौकरी कर रही है, व्यवसाय कर रही है, तो चलो उनको मना फतवा उनके ऊपर लगाना है कि नहीं आएंगे वो मंदिर में, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे से हमें आगे चलना चाहिए, समाज को उस दिशा में की ओर ले जाना चाहिए जहां से कि सरल जीवन जी के पारंपरिक पद्धति के अनुसार चल के भी हम अच्छी तरह से भक्ति कर पाए। अगला प्रश्न, कि दो रास्ते हमारे सामने हैं तो दोनों में से आप कौन सा रास्ता हमें बताएंगे करने के लिए। पहला रास्ता है घर में बड़े विस्तार में और ऐश्वर्य से अर्चा विग्रह की सेवा करें, मूर्ति पूजा अपने घर में करें, और मंदिर में बिल्कुल सेवा नहीं करें या बहुत कम करें। दूसरा मार्ग है घर में साधारण अर्चा विग्रह की सेवा और मंदिर में आके सेवा अधिक करें, हो सके तो दूसरा मार्ग, नहीं हो सके तो पहला मार्ग। क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग होती है ना, हर एक घर में समस्याएं अलग होती हैं, तो जैसे जैसे परिस्थिति है घर में वैसे देखना चाहिए। यदि संभव हो परिवार साथ साथ चले, लेकिन परिवार के जो कार्य है उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बच्चों के देखभाल में, घर के देखरेख में, घर में प्रसाद बनाने की पद्धति में वो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। परिवार में जो एक प्रेम की भावना है, एक एकता है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। साथ साथ हम और मंदिर में आए, सेवा करें, श्रवण कीर्तन करें, बहुत अच्छा। प्रश्नों को थोड़ा संक्षेप करिए, हाँ ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर काफी समय चले जाता है। अच्छा, ये सास बहू की बात है। मेरी एक समस्या है कि जब मेरे माता पिता घर में आते हैं तो मेरी माँ में और मेरे पत्नी में बहुत गलत फहमियाँ होती हैं, और दोनों एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं और मेरी चटनी हो जाती है बीच में। आप अनुभवी चटनियों से चर्चा कर सकते हैं। कि क्या करना चाहिए, बड़े समझदारी से काम लेना चाहिए, बड़े आराम से सोच समझ के कार्य करना चाहिए। और एक प्रश्न है, कई बार ऐसे होता है कि जो महिलाएं हैं वो प्रचार करने में और पुस्तक वितरण करने में अच्छे होते हैं, और ऐसे कई पुरुष होते हैं जो रसोई करने में, बच्चों का देखभाल करने में अच्छे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रचार नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पुस्तक वितरण नहीं करना चाहिए, ना भी हम ये कह रहे हैं कि पुरुषों को रसोई नहीं बनानी चाहिए या पुरुषों को बच्चों का देखभाल नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये जरूर कह रहे हैं कि किस तरह से और किस मात्रा में ये होते, ये हमें देखना चाहिए। हम माताएं जो है, महिलाएं हैं, वो भी अवश्य प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किन को? अब भारतीय एक वातावरण में कोई महिला सड़क पे खड़ी रहे अकेली और आने जाने वाले पुरुषों को किताब दे, किताब लीजिए, विदेशों में चल सकता है, विदेशों में ऐसी प्रथा है, हो सकता है, लोगों को कुछ आश्चर्यजनक चीज नहीं लगती ये बात को, लेकिन यहाँ हो सकता है कि लोगों को अच्छा न लगे, ये समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं दिखता है, और अच्छा भी नहीं है कि महिलाएं जाके खुलेआम पुरुषों के साथ मिले जुले, ये भी अच्छा एक ये अच्छी पद्धति नहीं है। तो करे, लेकिन अपने तरह से करे, जैसे प्रचार भी करना है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत से ऐसे प्रचार के लिए, सेवा के लिए अवसर मिलते हैं, पुस्तक वितरण भी ऐसे, गृहस्थ परिवार जब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, साथ साथ में पति पत्नी होते हैं, अनेक ऐसे गृहस्थ परिवार मिल जाते हैं और वहां कोई कार्यक्रम में करते हैं, ऐसे सब चीजें ठीक हैं, परंतु एक मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा का पालन करके हमें आगे चलना चाहिए। उसी तरह से कभी किसी घर में कोई समस्या है, पत्नी बीमार है या कोई और समस्या है, दूषित अवस्था में है, पति थोड़ा कुछ बनाना चाहते हैं रसोई में, तो ठीक है ना, उसमें क्या बुराई है, बना ले, या पत्नी बीमार होने के कारण बच्चों का देखभाल करना है तो भले करे। वैसे भी पत्नी ठीक ठाक हो भी तो पिता को चाहिए कि बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ये भी आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हमने ऐसे विभाग बनाए हैं कि एक को केवल ये करना है, दूसरे को केवल ये करना है, परंतु सवाल, प्रश्न ये होता है कितना करें और कैसे करें, प्राधान्य किस चीज का, किन के लिए क्या होना चाहिए, ये सोचना चाहिए हमें। हमने देखा है कि जिन गृहस्थों को किसी वरिष्ठ भक्त, सन्यासी, गुरु आदि से एक निकट का संबंध है, तो वो जल्दी प्रगति करते हैं भक्ति में, तो ये कितना महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थों को भी ऐसे प्रचार के कार्यों में लगाया था, हाँ, ये बिल्कुल सही है। महिलाओं को भी ये प्रचार के आंदोलन में शामिल होना चाहिए और हो सकती हैं, परंतु जिस तरह अभी चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 घंटों से, वैसे एक मर्यादा के भीतर। मर्यादा के भीतर हो तो ये टिकेगा, मर्यादा के भीतर नहीं हो तो फिर तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता पिता का देखभाल करें जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो यदि कोई पुत्र न हो, केवल पुत्री है, तो पुत्री का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति क्या होता है? हाँ, अवश्य जहां तक हो सके, क्यों नहीं, देखभाल कर सकते हैं। जहां तक अपने अपने घर में रह के माता पिता का देखभाल किया जा सकता है, ऐसे कई करते भी हैं।
क्या लिखा है आप पढ़ लो।
हमारा बेटा ब्रह्मचारी है। उसकी माँ हमेशा कहती है, इसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराओ, लेकिन वो गृहस्थ नहीं बनना चाहता है। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपका जीवन वैसे भी सफल हो गया है क्योंकि आपका बेटा ब्रह्मचारी बन गया है और उसको ऐसी निष्ठा है कि वो ब्रह्मचारी रहना चाहता है, अपना जीवन समर्पित करना चाहता है भगवान के चरणों में। तो उसे क्यों रोकना चाहते हैं आप? रहने दीजिए, अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, भगवान के खाते में आपका नाम भी जा रहा है कि आपका बेटा ऐसे हुआ कि उसने अपने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। तो रहने दीजिए, अच्छी तरह से सुखी है अपने स्थान में। क्या ये क्या लिखा है? दूसरा प्रश्न। हाँ ठीक है, तो वो वही प्रश्न है। अच्छा, कभी जोरदार प्रश्न है कोई? श्री राम ने सीता को वनवास में भेजा था, हालांकि सीता बहुत पतिव्रता स्त्री थी। तो लोग कहते हैं कि यदि पतिव्रता होने का नतीजा या परिणाम यही है तो हमें पतिव्रता क्यों होना चाहिए? तो हमें ये वैष्णव दृष्टिकोण से कैसे समझाना चाहिए लोगों को? हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब रावण सीता को अपहरण करके ले गए तो श्री राम ने आज जमीन आसमान एक करके सीता की को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए युद्ध किया। ये भी याद रखना चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि वनवास में भेजा। एक बार हमारे एक भक्त किसी राजनेता से मिले थे जो मंत्री थे किसी राज्य में। आप तो जानते हैं कि आजकल वातावरण कुछ ऐसा है कि नेता भी हो, कोई भी हो, बहुत भगवान के प्रति कोई भावना नहीं रहती है। तो ये भक्त उनको जाकर रामायण गीता के बारे में कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने बातों बातों में कहा होगा कि राम की तरह आदर्श हमें बनना चाहिए इत्यादि। तो कहने लगे, क्या बात है, वो रावण ने क्या गलती की? मंत्री बात कर रहे हैं ऐसे। हाँ, रावण ने क्या गलती की? उसने स्त्री को देखा, अच्छे लगे, उठा के ले गए, क्या? तो हमने उस भक्त से कहा कि आपको उनको पूछना चाहिए था कि आपके पत्नी को उठा के ले जाए, तो आप क्या यही बोलेंगे? फिर हमने कहा कि नहीं नहीं मत पूछना, हो भी सकता है वो हाँ हाँ वो कह देंगे वो। क्या पता आजकल लोग क्या बोलेंगे, क्या कुछ भरोसा नहीं आजकल। तो हमें याद रखना चाहिए कि श्री राम ने वनवास में यदि भेजा, लेकिन सीता देवी को बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया सीता देवी को बचाने के लिए? तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण हम सबके लिए वो बहुत सारे महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं, इसलिए इनसे हमें सीखना चाहिए। अच्छा, ये एक युवती है, अवश्य प्रश्न। मैं कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की हूं, तो ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़की को बाहर की दुनिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस्कॉन के बाहर जहां हमें लड़कों से भी बात करना पड़ता है? तो केवल जितना आवश्यक है उतना ही बात करना है, और बात करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ में बहुत मिलजुल कर चलने जाने आने में, ऐसे कार्यक्रमों में जहां कॉलेज के बच्चे आजकल बहुत सारे पार्टीज में इधर उधर जाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के संग में रहना है, केवल पढ़ाई करने के लिए जाना है, सबसे अच्छे संबंध बनाओ दूर से, और फिर बस अपने यहाँ चले आना वापस। ज़्यादा ऐसे उन लोगों के बीच में पढ़ने से हमारी चेतना खराब हो सकती है। भले दूसरे हमें समझें कि भाई ये बड़े विचित्र हैं, ऐसे कहते हैं, कोई बात नहीं, कहने दो। हमें अपना काम करना है, उनको अपने रास्ते में जाने दो, हम अपने रास्ते में जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या है, यदि कोई पति या पत्नी मंदिर आते हैं फिर भी टीवी रात को देखते हैं, अरे ऐसा प्रश्न आपने कर दिया कि बस, फिर भी रात को टीवी देखते हैं और सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता, क्या करें? यही तो समस्या हम कर की बात कर रहे थे ना पहले, प्रवचन के पहले शुरुआत में, कि आजकल ये टीवी ने ऐसे समस्या खड़ी कर दी है कि जो 750 साल मुसलमानों का राज हुआ, 250 साल अंग्रेजों का राज है, उसमें जो हानि नहीं पहुंची संस्कृति में, वो 50 साल में टीवी ने कर दिया है। अभी भक्ति करने के लिए लोग तैयार नहीं है, दिन रात बैठे रहते हैं टीवी के सामने। तो धीरे धीरे से उन्हें भक्तों के संग में आना चाहिए, इस आदत को छोड़नी चाहिए। तो हो गया। Just tell me when it is time to close. Huh? When it? Okay. एक भक्त मुझे उनके घर में बुला रहे हैं, ऐसा प्रश्न है, अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, परंतु मैं नहीं जा पा रही हूं, क्या ये अपराध है? नहीं, अपनी समस्या को समझा सकते हो कि इस कारण से मैं नहीं आ सकती है, इसलिए अच्छा एक दो प्रश्न ही है। एक पति का कर्तव्य क्या होता है उसके माता पिता के प्रति, जबकि उसकी पत्नी स्वीकार नहीं करती है कि उन्हें माता पिता का देखभाल करना चाहिए? हाँ, ये भी आजकल कई जगह से देखा जाता है, ये सब समस्याएं हैं। तो अपनी अपनी विशेष परिस्थिति में इसके लिए अलग अलग उपाय ढूंढने चाहिए, लेकिन ऐसे करना चाहिए जिससे कि दोनों जगह शांति बनी रहे। ठीक है, मेरे ख्याल से यही समाप्त करें, क्योंकि अभी थोड़ी सूचनाएं भी हैं, प्रश्न तो अनेक हैं, यह विषय भी ऐसा है कि काफी लंबा है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे एक सुंदर प्रकल्प में, सुंदर मंदिर में, सुंदर भक्त समाज से आप जुड़े हुए हैं, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। अच्छी तरह से भक्ति करें और अन्यों को भक्ति में आने के लिए भी प्रेरित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण, कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हैं, थोड़ी देर बैठे होंगे। सर्वप्रथम हम महाराज जी का धन्यवाद देना चाहेंगे, पिछले 3 दिनों से